ये सही वक्त नहीं है, रात हो गई है। आई थिंक मुझे कल सुबह तक का इंतज़ार करना चाहिए और फ़ोन पर बात करने की जगह जाकर उससे मिलना चाहिए। मानव ने मन ही मन फैसला किया और फ़ोन वापस रख दिया। कुछ देर बाद कार रुकी। मानव ने बाहर देखा तो वो घर पहुंच गए थे, लेकिन कार घर से थोड़ा पीछे रुकी थी क्योंकि आगे एक और कार खड़ी थी। मानव बाहर निकला, नज़रें अपने घर की तरफ घुमाई तो अचानक ही उसका ध्यान उस कार के पास खड़ी लड़की पर गया। जीन्स, वुलन कुर्ता और खुले बाल। पीछे से देखकर ही मानव उसे पहचान गया और उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, जैसे बदन अकड़ गया था, कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। नित्या कुछ देर वहीं खड़ी उस घर को देखती रही। वो अक्सर यहाँ आया करती थी और यूं ही कुछ देर उस घर को देखने के बाद चली जाती थी। इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी। नित्या ने धीरे से उसे साफ किया और जैसे ही पलटी, उसकी नज़र कुछ कदमों की दूरी पर खड़े मानव पर पड़ी और उसकी पूरी दुनिया जैसे उस लम्हे में ठहर गई। मानव, नित्या के थरथराते होंठों से धीमी सी आवाज़ निकली। उसने अपनी पलकों को फड़फड़ाया। पहले लगा था जैसे कोई सपना या भ्रम है, लेकिन जब हर बार आंखों के आगे मानव का चेहरा आया तो उसका ये भ्रम भी दूर हो गया। इसके साथ ही उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गए। नित्या ने बड़ी ही बेरुखी से मानव पर से नज़रें फेरी, दरवाज़ा खोला और कार में बैठ गई। मानव की आंखों के सामने से वो कार निकली और वो बुत बना सदमे की स्थिति में खड़ा बस उसे खुद से दूर जाते देखता रहा। मनु, वो नित्या थी ना? अनीता जी भी गाड़ी से बाहर निकल आईं। उन्होंने विंडो से कार में बैठकर जाती नित्या को देख लिया था और अब हैरान परेशान सी मानव को देख रही थी, जो खुद सदमे में था लेकिन अब होश में लौट चुका था। मानव की आंखों के आगे वो लम्हा गुजरा जब नित्या ने उसे इग्नोर किया था, चेहरा फेरकर कार में बैठकर उसकी आंखों के सामने से निकल गई थी। मानव के दिल में एक टीस सी उठी। जो लड़की अगर एक दिन उससे नहीं मिलती थी तो अगले दिन आकर उसके गले से लग जाया करती थी, आज उसने इतने महीनों बाद उसे देखा और चेहरा फेरकर चली गई, जैसे अब उसकी ज़िंदगी में मानव की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, उससे अब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिसका चेहरा उसे देखते ही खिल उठता था, आज उस चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं आई थी। दुख, शिकायत, नाराज़गी, गुस्सा, क्या नहीं था उन बड़ी बड़ी गोल आँखों में। नित्या को उसके आने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात झूठ थी और इसका सबूत था नित्या का इस वक्त यहाँ होना। उसकी आंखों में तैरते वो आंसू इस बात की गवाही चीख चीख जगे रहे थे कि मानव उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन आंसुओं की वजह मानव था। इसका एहसास होते ही मानव का मन अजीब सी घुटन और बेचैनी से भर गया। मनु, वो नित्या ही थी ना? मैंने देखा वो गाड़ी में बैठी थी, अनीता जी ने एक बार फिर सवाल दोहराया। मानव चौंकते हुए अपने सेंसेस में लौटा। उसने ठंडी आह भरी और सर्द लहजे में जवाब दिया, हाँ आई, तूने जिसे देखा वो नित्या ही थी। लेकिन अगर वो नित्या थी तो ऐसे चली क्यों गई? क्या उसने हमें देखा नहीं? मानव ने एक बार फिर नित्या का चेहरा फेरना याद किया और होठों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। उसने खोए स्वर में कहा, शायद नहीं देखा होगा या शायद देखना नहीं चाहती होगी। ये तू क्या कह रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मानव ने गहरी सांस ली और अनीता जी की तरफ घूम गया। आई, तेरी बहू शायद तेरे बेटे से गुस्सा और नाराज है, इसलिए हमसे बिना मिले ही चली गई। पर तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही उसकी सारी नाराज़गी दूर करके उसे मना लूँगा। और अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। बहुत इंतज़ार करवा लिया तूने मुझे। जब जब मैं शादी की बात छेड़ती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता है, लेकिन इस बार मैंने भी ठान लिया है, मैं तेरा लगन करवा कर रहूँगी। मैं खुद जाऊँगी नित्या के बाबा से बात करने और तुम दोनों का रिश्ता तय करके आऊँगी। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी, अब आपको मानव की शादी करवा ही देनी चाहिए। नितिन ने भी उन्हें सपोर्ट किया। मानव ने दोनों को देखा, फिर अफसोस में सिर हिलाया और अपना सामान निकालने लगा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा आपसे मिलने। मानव सामान अंदर रखने लगा था। नितिन ने अनीता जी से इजाज़त ली तो उन्होंने हामी भर दी। उसके जाने के बाद अनीता जी भी अंदर जाने लगी थीं। तभी उनकी पड़ोसन, जो काफ़ी देर से अपने दरवाजे की ओट में छुपी सब देख रही थी, निकलकर अनीता जी के पास आ गई। अरे अनीता, कहाँ थी इतने दिन? उस दिन तुझसे आखिरी बार बात हुई, अगले दिन देखा तो दरवाजे पर ताला लगा था। अगले दिन पूरा दिन बीतने पर भी ना तू आई और ना मानस कहीं नजर आया। मुझे तो चिंता होने लगी थी कि ऐसे अचानक बिना बताए तो कहाँ चली गई। इतने महीने बीत गए, तुम दोनों तो नहीं आए, लेकिन पता नहीं कौन कौन आकर तुम्हारे बारे में पूछता था। आसपास वाले सब बातें बनाते थे कि जरूर मानव ने कोई गलत काम किया होगा, तभी उसे ढूंढने आदमी आते हैं और वो तुझे लेकर यहाँ से भाग गया है। लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं तो कहती थी कि मानव कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। कोई परेशानी होगी तो बताना, ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी, कहाँ रही इतने महीने, वो सब आदमी कौन थे और मानव को क्यों ढूंढ रहे थे। उनमें से एक वो भी था जो अभी यहाँ तेरे साथ खड़ा था, वो तो बहुत बार आया था। उस लेडी का इशारा नितिन की तरफ था। असल में उस मोहल्ले की चार्टर बॉक्स थी ये लेडी। इतना बोलते कि सामने वाले का सिर दर्द कर देती। कहाँ क्या हो रहा था सब खबर रखती थी और एक की चार लगाकर बात फैलाने में तो माहिर थी, लेकिन बनकर ऐसे दिखाती जैसे उससे ज्यादा शरीफ पूरी दुनिया में कोई दूसरी नहीं। अनीता ही सब समझ रही थी कि वो क्या जानने की कोशिश कर रही थी। वो सौम्यता से मुस्कुराई। मानव का एक्सीडेंट हो गया था, इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ा। सब कुछ इतने अचानक हुआ कि किसी को बताने का भी वक्त नहीं मिला। वो लड़का जो अभी यहाँ हमारे साथ था और मानव को ढूंढने आया करता था, मानव का दोस्त है। उसे भी कुछ नहीं पता था और मानव से बात भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए देखने आता था कि हम वापस आए या नहीं। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था मानव का, इलाज के लिए तो दिल्ली गई थी, वापस लौटने में इतने महीने लग गए। लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अब कैसा है मानव? अब तो वो बप्पा की कृपा से बिल्कुल ठीक है, जख्म भी भर गए, निशान भी मिट गए। तुम बताओ, तुम कैसी हो और तुम्हारे परिवार में सब कैसे हैं? अनीता जी ने जानकर बात का रुख मोड़ा, वरना जैसा उस औरत का नेचर था वो बाल की खाल निकाले बिना मानती नहीं। घर में तो सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। तुम दोनों माँ बेटे ऐसे बिना बताए चले गए, मुझे इतनी चिंता होती थी। फिर पता नहीं कैसे कैसे आदमी आते थे तुम्हारे बारे में पूछने, तो डर भी लगता था कि कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। और वो लड़की जो पहले तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहती थी, वो भी हर दूसरे दिन आकर यहाँ खड़ी हो जाती थी, बंद घर को घंटों देखती रहती, रोती फिर चली जाती थी। बड़ा तरस आता था मुझे दोस्त पर। मैं तो पप्पा से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे देवा, मानव और अनीता जहाँ भी हैं उन्हें सही सलामत वापस भेज दे। देख, मेरी प्रार्थनाओं का असर था कि मानव ठीक हो गया और तुम दोनों वापस आ गए। अब तो मेरे तरफ से सिद्धिविनायक मंदिर में प्रसाद चढ़ा दियो। मैंने मन्नत मांगी थी कि वो दोनों आ जाएंगे तो देशी घी के लड्डू बनवाकर चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ, मैं कल ही देशी घी के लड्डू बनाकर मंदिर में चढ़ा कर आऊंगी। प्रसाद मुझे देना मत भूलना। जीभ होंठों पर फेरते हुए वो बेशर्मी से मुस्कुराई। अनीता जी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से तो मेरा मानव मौत के मुंह से जिंदा लौट आया है। हाँ, सही कहा तुमने, वो औरत खुद पर इतराने लगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मानव इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ, तुम जाओ, बस मेरे बेसन के लड्डू मत भूलना।
अनीता जी ने खींचते हुए सिर हिलाया, किसी तरह उस बातूनी स्वार्थी औरत से अपना पीछा छुड़ाया और जल्दी से अंदर चली गई। डिनर वो फ्लाइट में ही कर चुके थे, तो अब फ्रेश हुए, चेंज किया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। इनाया कायरव की हथेली थामे उसके कंधे पर सिर रखे बैठी थी और कायरव ने उसे साइड से हथ किया हुआ था। कार रुकी तो इनाया ने सिर विंडो की तरफ घुमाया। घर आने की खुशी उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर लिपटी थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी मुस्कुराहट के साथ साथ उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। टू बी कंटिन्यूड।